Hello friends, in chapter 7 we saw various types of instruments and the classifications. In that classification, in those various types of instrument, we saw one particular instrument which talks about forced bell. In the forced bell, somebody who wants to play a fraud changes certain names or amount or certain material information on the instrument to suit his convenience, to get benefit out of it. Now, this chapter, chapter 8, deals with the alterations and errors. What are the alterations that are permissible? What are the alterations that are not permissible? In a forged instrument, any material alteration in the name of the payee without the consent of the drawer is not permissible. It is not allowed. So, this chapter 8 talks about if there is an error in writing the instrument, you correct it. That is allowed. But if there is a particular alteration, whether that alteration is allowed or not, now these are the details we are going to see in chapter 8. Now, the first portion of this chapter talks about material alterations. Now, there are alterations. What are material alterations? What are immaterial alterations? Now, what are the valid alterations? What are invalid alterations? This is exactly what we are going to see. Any material alteration made by a party to the instrument without the consent of the other parties makes the instrument void. Normally, in a negotiable instrument, there are basically three people involved: the maker of the bill, the drawee, and the payee. The instrument is in the hands of the maker at the initial stage, it goes to the drawee, and from the drawee it goes to the payee. When the drawee receives the instrument, he makes certain changes without even telling the drawer, it becomes invalid. If from the drawee it goes to the payee and he makes certain changes without informing the drawee or the drawer, again that instrument will be invalid. It is not allowed. So, what it means is that if you are going to make changes in the instrument, if you are going to change certain facts and figures inside the document, it should be done only with the consent of all the parties. Consent here means on a paper signature. If some changes are made and somebody signs against it, that means he has agreed to the changes. If there is no signature appearing on the change, कुछ तो भी लिखा है वो काट के और कुछ दूसरा कुछ लिख दिया एंड नोबडी साइंस अगेंस्ट इट दैट मीन्स देर इज नो कंसेंट ऑफ द पार्टीज सो इफ देर इज अ चेंज मेड द पार्टीज विल हैव टू साइन ऑन द साइड वेयर द चेंजेस आर मेड दैट मीन्स दे हैव अग्रीड टू द चेंजेस दे सॉ दैट द चेंजेस आर मेड एंड दे हैव अग्रीड देन द डॉक्यूमेंट रिमेन्स वैलिड इफ देर इज नो सच सिग्नेचर दैट मीन्स द डॉक्यूमेंट इज इनवैलिड. So, the Act says any material alteration made by a party, it doesn't say which party, any party to the instrument without the consent of other parties, it will make the instrument void. That instrument will not be a negotiable instrument anymore. So, you cannot enforce payment on that instrument. Material alteration is one in which significant changes are made, whereby the rights and liabilities of the parties concerned is affected. I mean, the changes are made in such a way that the rights and liabilities of the parties involved, that gets affected. In that case, it is a material alteration. Sirf ek comma full stop change kiya to farak nahi padega. Par yadi zeros add kar liye figure mein, to ekdam bahut bada farak padta hai. अमाउंट इज रिटन 600 और उसके आगे दो और जीरो ऐड कर दिया तो अमाउंट बिकम 60,000. तो कहां 600 और कहां 60,000, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया. सो दिस इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन बिकॉज द राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसमें फर्क आ गया. एनी न्यू एडिशंस मेड इन द इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो मटेरियल ऑल्टरेशंस. 60,000 लिखा हुआ है और उसमें दो जीरो काट दिया मैंने, एड नहीं किया, काट दिया. 60,000 को 600 किया तो भी गलत है, 600 को 60,000 किया तो भी गलत है. सो ऑल दीज थिंग्स आर मटेरियल ऑल्टरेशंस. द नेम ऑफ पेई इज गिवन एज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने प्राइवेट लिमिटेड निकाल दिया, सिर्फ एबीसी रखा, तो इट इज चेंज्ड. द फर्स्ट नेम इज अ लिमिटेड कंपनी, इन द सेकेंड इंस्टेंट इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एबीसी, मिसेस एबीसी, मे बी पार्टनरशिप और मे नॉट बी पार्टनरशिप, जस्ट अ नेम. तो यहां पे द स्टैंडिंग ऑफ द पीपल, द इंटरसे रिलेशंस, ऑल दिस गेट्स अफेक्टेड. इसीलिए मटेरियल ऑल्टरेशन जहां भी हैं वहां पे द पार्टी हैज टू साइन. वेयर इट इज द क्वेश्चन ऑफ पेई हु रिसीव्स द इंस्ट्रूमेंट विथ सच चेंजेस, ही हैज टू शो इट टू द ड्रॉअर. देखो इसमें ये चेंजेस हैं, डू यू एग्री टू इट, एंड इफ द ड्रॉअर साइंस अक्रॉस इट, देन द पेई विल गेट द पेमेंट, और ही विल मेक द पेमेंट, द ड्रॉअर विल मेक द पेमेंट. मटेरियल ऑल्टरेशन, नाउ व्हाट आर दीज मटेरियल ऑल्टरेशन, कहाँ कहाँ ऑल्टरेशन अलाउड हैं, कहाँ नहीं अलाउड हैं, लेट्स लुक इनटू इट. मटेरियल ऑल्टरेशन इंक्लूड चेंज इन द नेम ऑफ द नेम ऑन द इंस्ट्रूमेंट, द नेम ऑफ द पेई दैट इज चेंज्ड. व्हेन आई एम सेइंग मिस्टर बी प्लीज पे टू मिस्टर सी, अब बी का नाम काट के डी का नाम डाल दिया, आई एम मिस्टर बी, पर मैं मेरा नाम निकाल देती हूँ एंड आई पुट मिस्टर डी, सो आई डोंट हैव टू मेक पेमेंट टू सी, मिस्टर डी विल हैव टू मेक द पेमेंट टू सी. तो मैंने क्या किया, नाम बदल दिया. या फिर आई एम मिस्टर सी के हाथ में नहीं गया इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर डी गेट्स इट, उसने क्या किया, सी चेंज करके डी डाल दिया, दैट मीन्स सी विल नॉट बी द पेई, डी बिकम्स द पेई, सो ही विल गेट द पेमेंट, सो ही चेंजेस सी टू डी. तो ये जो चेंजेस है, नेम इन द नेम इज अफेक्टेड, नेम इज ऑल्टर्ड, दैट इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन. चेंज इन द टेनर, टाइम और यूसेंस, ऑन द इंस्ट्रूमेंट इट इज रिटन पे ऑन डिमांड, आई रिमूव द वर्ड डिमांड एंड राइट पे आफ्टर 30 डेज, द टेनर इज चेंज्ड फ्रॉम अ डिमांड बिल, इट बिकम्स अ टाइम बिल, सो द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज चेंज्ड, सो द टेनर इज चेंज्ड, सो दिस इज अगेन अ मटेरियल ऑल्टरेशन. बिकॉज यू नो वॉट हैपन्स, द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस, द ड्रॉई पेई पोजिशन चेंजेस, चेंज इन द प्लेस ऑफ पेमेंट. If I have to make the payment in Kolkata, I have to make the payment in Kolkata. If Kolkata has changed to Jamshedpur, it becomes a material alteration. Because, see, as far as payment is concerned, payment has to be made. But आपने पहले तय किया था कि पैसा कोलकाता में दिया जाएगा, वो कोलकाता चेंज करके आपने जमशेदपुर कर दिया without even asking me, I am not responsible. I will not make the payment at all, क्योंकि payment becomes null and void, the instrument is invalid, so you cannot change Kolkata to Jamshedpur without consulting me. आपने क्यों किया ऐसा, तो आपको payment ही नहीं मिलेगा. I am justified in saying that because the bill is invalid if there is a material alteration and that is not countersigned by me. Change in the date. Why will anybody change the date? Suppose I write on the bill, please make payment on 30th December and I change December to October. So payment is to come on 30th October. So I have 2 months aage usko sarka diya. What I have done, I have accelerated the payment. I am going to get the payment. I am the payee. I change this without consulting the drawer or drawee and I say that I should get the payment 2 months in advance. This was not what was agreed upon. What was agreed upon when the bill was drawn? Ki payment will come to you only on 30th December. But 30th December ko aapne 30th October kar diya, toh phir it is a material alteration and I will not be entitled to make the payment to you if you do this change. Change in the rate of interest. I write on the bill, please pay to Mr. C a sum of rupees 5 lakhs together with interest at 18% from 1st October to 30th November. Ab wo 18% ko maine 28% kar diya, so amount changes, whereby the tenor of the instrument changes, where the value of the instrument changes, and that is why it is going to affect my right. Yadi 18 ko 28 kiya aapne without informing me, without consulting me, and without my counter signature, I stand relieved because of the change that is made. And this is a material alteration as accepted by the Act. Change in the amount payable. Yadi amount, I have written rupees 5 lakhs, 5 ko 50 lakhs kar diya, 6 lakhs, 6 ko 60 lakhs kar diya. These are all material alterations and it will affect the relation between the payer and the drawer or payee and the drawee, and that will nullify the liability. Nobody needs to pay any amount if such material alteration takes place without the party's countersigning. So, it is accepted as a material alteration, change in the amount. Addition, deletion of names. The instrument says, Mr. B, please pay to Mr. C. Ab maine kya kiya, usme likh diya Mr. B, please pay to, I am Mr. E, I say write, please pay to Mr. C and E. Maine add kar diya, and E. So, only part payment will go to C, part amount will come to me. So, I have reduced the right of Mr. C without informing anybody. I am an outsider, I want to be included as a payee. So, maine aisa kar diya, so naturally it is treated as a material alteration. And or I remove the name of C and I put my name, that is again a material alteration. So, addition, deletion of names is a material alteration because it changes the status of the person. The rights and liabilities get affected. Alteration of order check to bearer. An order check is there. It says please pay to C or order. Or wo maine order kaat ke bearer likh diya. When the drawer writes please pay to C or order, he means specifically ki bearer ko nahi, ye C ya C ke namit vyakti ko hi milna chahiye. To vahan pe yadi main wo order kaat ke bearer dalti hun, that anybody can take the payment, I am affecting the rights of the real true owner. So this is a material alteration. Law says that this is a material alteration. Please do not make payment if it is not countersigned by the drawer. The changes made in this instrument are not significant enough to change the rights and liabilities of the other party. We are talking of immaterial alterations. Material alterations affects the rights and liabilities. So, in the case of material alterations, there is no need to make the payment if it is not countersigned by the affected parties. But if there are immaterial alterations, then their rights and liabilities are not affected. When the rights and liabilities are not affected, the instrument remains valid and payment can be made. We have material alterations, we also have immaterial alterations. Alteration means changing, any change that is done. So, an immaterial alteration is one where the changes made are not significant to change the rights and liabilities of the other party. So, an example is making corrections in the spelling mistake. I have written the word Gayatri. Please pay to Mrs. Gayatri Devi. Now, Gayatri spelling I write G-A-Y-A-T-R-I. Now, that person changes it to G-A-Y-A-T-R-E-E. So, she spells it as Gayatri. This is not a material alteration. Gayatri is Gayatri. Whether it is T-R-I or T-R-E-E ending. Wahi hai. So, it's an immaterial alteration. So, some spelling mistake is corrected. Or, where I have written, please pay rupees 64,000. 784 rupees. So, yahan pe 64,000 mein maine spelling mistake kar diya aur wo correct kiya hai, to it is okay. THOUSAND. Par wahan pe S ke badle Z dal diya ya fir D ke badle D chhut gaya. So, that is corrected. They are all immaterial alterations. Only spelling mistakes are corrected. Amount is not altered. Only the spelling mistake in words is corrected. A material alteration discharges all the parties because they will say, main toh chhod gaya, this correction was done without my consent. So, in a material alteration, the parties are discharged from making any payment. So they were liable prior to the alteration. In an immaterial alteration, the parties continue to be liable. Immaterial alteration is a very insignificant change, or वहाँ पे no rights and liabilities are affected and people can continue to be liable and they will be liable. Filling an inchoate instrument is not a material alteration. It was totally blank, सिर्फ sign करके दे दिया मुझे check उसने, मैंने उसमें details भर दिए. It is an alteration from a blank instrument, it has become a filled in instrument, complete instrument, from incomplete to complete status, but it is not a material alteration. So the validity of the instrument remains intact, and so you can't say that inchoate instrument is a immaterial alteration, and I mean material alteration, toh maine iska payment nahi karna hai, because law takes care of this inchoate instruments. Unilaterally allowed alterations. Now law allows certain alterations. Yes, you can do this and there is no need to take recourse to the drawer or drawee. This is provided in the law itself. Now there are some changes which are allowed. What are these changes? Some alterations are done by one party without the knowledge of the other party. This includes crossing of a check. Okay? Or changing a general crossing to a special crossing. You put crossing on the check, I am the holder of the instrument, I am the endorsee, I have received the check in my favor, aur maine usme crossing dal diya. To check mein pehle crossing nahi tha, it was an open check, now crossing aa gaya, it becomes a cross check. To check ka status badal gaya. But it is not a material alteration. It is an alteration which is allowed. As an endorsee, I want to take precaution and so I have put the crossing. The crossing may be general crossing, it may be a specific crossing, special crossing, but it is valid, it is allowed. Changing a general crossing to a special crossing or changing a blank endorsement to full endorsement, these are all changes which are permissible by any holder, the first or second or third holder, any endorsee can do it. These alterations do not affect the right or liability of any party. किसी का right छीना नहीं जाता है, किसी की liability dilute नहीं होती है. They continue to be liable, they continue to get their right enforced. So these changes, the crossing added or blank endorsement to full endorsement, ये सब allowed हैं and they are not treated as material alterations. Some material alterations do not vitiate the instrument. There is a bearer instrument. जब चेक बनाया था या बिल बनाया था, ड्रॉअर ने लिखा प्लीज पे टू बी योर ऑर्डर. इफ दैट ऑर्डर वर्ड इज रिमूव्ड एंड somebody writes bearer, that is a material alteration and that will require the signature of the maker, the drawer. But if he writes please pay to B or bearer and that is cut, bearer word is cut and put written order, that is not a material alteration, it is only strengthening the safety of the instrument. So that is allowed. Ulta allowed nahi hai. Again I am telling you, order instrument ko bearer instrument nahi kar sakte hain without the consent of the maker. But bearer instrument ko order kar sakte hain. Bearer शब्द काट के order डाल सकते हैं, that is permitted. There is no need for the maker of the check to sign it. Errors on the instrument, जैसे मैंने कहा some spelling mistakes are there and that is corrected, or it is corrected only to protect the drawer's signature, I mean drawer's rights. This is all allowed. Errors on the instrument can be corrected only with the drawer signature. Normally if there is a mistake, that should be corrected by the person who has made that mistake. Suppose I prepare a check. I have written the date 3/10/2013, but 2013 likhne samay zero chhut gaya, 213 likh diya maine. Ab 213 was a year valid 2000 years ago, but if that 213 is to be changed to 2013, the maker of the check has to sign there. काटेंगे 213 काट के 2013 लिखेंगे, या फिर 2013 के बदले 2031 लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 1-3 का 3-1 लिख दिया, तो ये भी चेंज करने के लिए द मेकर हैज टू साइन दैट इट वॉज एन एरर, गलती हुई है. अब गलती सुधारते समय मेकर द ड्रॉअर ऑफ द चेक और द इंस्ट्रूमेंट हैज टू साइन दैट. सम एरर्स हाउएवर विच आर नॉट मटीरियल विल नॉट रिक्वायर द ड्रॉअर सिग्नेचर. एज आई सेड, आप वर्ड्स में लिख रहे हैं अमाउंट 1000, TOUSANDD, डी छूट गया, या SAD लिख दिया, N छूट गया, तो N ऐड करते हैं, ND लिखते हैं, या TOUSANDD के बदले कुछ और स्पेलिंग लिख दिया, तो वो करेक्ट किया. फिगर्स में अमाउंट बराबर लिखा है, वर्ड्स में भी लिखते समय सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. 24 लिखते समय 20 TWNTY ई छूट गया, या THD लिख दिया, आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, इट्स ऑल एक्सेप्टेड. बट दे आर नॉट रियली मटीरियल ऑल्टरेशंस, दे आर एरर्स विच आर नॉट मटीरियल, विच डू नॉट अफेक्ट द ड्रॉअर्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड दे डू नॉट रिक्वायर टू बी काउंटर साइन बाय द ड्रॉअर. तो ऐसे जो एरर्स हैं ऑन द इंस्ट्रूमेंट, सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एरर, कहां पे मिस्टेक है और क्या गलत है. नाउ इफ आई कम एंड टेल कि मोहनलाल के नाम पे चेक किया और M काट के S डाल दिया, इट बिकम सोहनलाल, तो गलत होगा. इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज. आई के नॉट से कि स्पेलिंग मिस्टेक है कि M के बदले S डाला या S के बदले M डाला, ये गलत है. अब चेक इज डॉन इन माई फेवर, इट इज माई नेम इज मल्लिका गंगा खेडकर, और मल्लिका के बदले मेनका लिखा है, तो मैं नहीं कह सकती हूं कि स्पेलिंग मिस्टेक है. मेनका इज अ डिफरेंट नेम ऑल्टुगेदर, मल्लिका इज अ डिफरेंट नेम ऑल्टुगेदर. तो यहां पे यू हैव टू सी वॉट इज द नेम नेचर ऑफ द मिस्टेक कमिटेड. इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ अ स्मॉल नेचर. अब मल्लिका लिखते समय आई पुट डबल एल और सिंगल एल, वो इनसिग्निफिकेंट है, बट मल्लिका का मेनका किया है तो बहुत ही बड़ा फर्क हुआ है. तो दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज एन इनसिग्निफिकेंट मिस्टेक. और यदि चेंज करना ही है तो ड्रॉअर ऑफ द चेक और ड्रॉअर ऑफ द बिल हैज टू काउंटर साइन. सो एरर्स जो हैं, देयर आर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एरर, विच इज सिग्निफिकेंट विच इज नॉट सिग्निफिकेंट. सो द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट हैज टू एंश्योर दैट द मनी गोज टू द राइट पर्सन हु इज रियली एंटाइटल्ड टू गेट इट. किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पैसे नहीं जाना चाहिए, या किसी सही व्यक्ति को हम पैसे डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एंश्योर करना है. इसीलिए यू हैव टू सी द नेचर ऑफ द चेंजेस मेड, वॉट आर द ऑल्टरेशंस, वॉट आर द एरर्स, एंड वॉट आर रियली मटीरियल ऑल्टरेशंस, वॉट आर इमटीरियल ऑल्टरेशंस, एंड इफ दे आर काउंटर साइन बाय द ड्रॉअर, ओके एक्सेप्ट इट, देन यू कैन मेक द पेमेंट. बट अगेन यू हैव टू एंश्योर दैट दीज आर नॉट फोर्जरीज. चेंजेस किया अपने इंस्ट्रूमेंट में, ओके, चेंजेस किसने किया, पेई ने किया, ड्रॉई ने किया, या किसी और व्यक्ति ने जो फ्रॉड कमिट कर रहा है, हु इज फोर्जिंग द सिग्नेचर, ये सब आपको देखना है. सो ऑल थिंग्स कम इन टू प्ले. यू आर टॉकिंग ऑफ मटीरियल ऑल्टरेशंस, यू आर टॉकिंग ऑफ फोर्जरी, यू आर टॉकिंग ऑफ फिक्टिशियस पीपल, यू आर टॉकिंग ऑफ पीपल हु आर रियली एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट, यू आर टॉकिंग ऑफ अ पर्सन हु हैज टू मेक द पेमेंट. तो यहां पे वी हैव टू सी एवरीथिंग इन टोटो एंड देन सी हु इज टू रियली गेट द पेमेंट. And then the real person, the beneficiary, should get the payment, or wrong person should not get the payment. The person who has to make the payment should make when it is demanded. And his rights, his liabilities should not be vitiated or diluted. All these aspects are to be taken care of. So you have to look into the instrument very carefully and ensure that undue harassment is not there and undue एडवांटेज इज ऑल्सो नॉट टेकन केयर ऑफ. तो ये सब देख के हम इंस्ट्रूमेंट ऑनर करें या डिसऑनर करें, वी हैव टू एंश्योर दीज थिंग्स. सो प्लीज लुक इन टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन टोटो, डोंट सी इन आइसोलेशन एंड डोंट सी वन ऑन वन. सो टेक एवरीथिंग इन टू अकाउंट एंड देन डिसाइड वेदर इट्स अ मटीरियल ऑल्टरेशन और इट इज जस्ट एन एरर, जेन्युइन एरर विच डज नॉट रिक्वायर द ड्रॉअर सिग्नेचर, और यू डू वॉन्ट द ड्रॉअर सिग्नेचर, ओके गो अहेड टेक इट एंड देन मेक द पेमेंट. So this is all about material alterations and errors and changes. Okay, thank you.